الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں اور احکام تجارت رمضان المبارک میں اسی ٹائم ہوا کرے گا, یعنی دوپہر 2 بجے آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے. سوالات بھی ہوں گے, جوابات بھی ہوں گے, حسب معمول مفتی صاحب بھی ہوں گے, لیکن اس وقت ہم سلسلے میں صرف تجارت اور مالی لین دین سے متعلق سوالات نہیں کریں گے, بلکہ رمضان المبارک سے متعلق بھی سوالات ہوں گے, اور اگر دیگر سوالات شامل سلسلہ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. رمضان المبارک ہے, احکام تجارت ہے, مفتی صاحب موجود ہیں, تو فائدہ اٹھاتے ہوئے آج انشاءاللہ عزوجل ہم شروعات کریں گے, وہ بالخصوص رمضان سے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں, ان کے اوپر بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے, حکم معلوم کریں گے, جائز ناجائز کا معلوم کریں گے. تو دیکھتے رہیے آخر تک, انشاءاللہ بہت کچھ اچھا آپ کو ملنے والا ہے, بہت علم دین کے خزانہ آپ کو ملنے والا ہے اللہ نے چاہا تو, بالخصوص رمضان المبارک سے متعلق, روزوں سے متعلق, اور رمضان کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے, اور پھر کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان ہے, امیر اہل سنت نے جو 3 کام عطا فرمائے ہیں اس میں سے 1 کام روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی ہے, تو ابھی بھی پڑھ لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات میرے پاس بھی موجود ہیں, وہ بھی شامل سلسلہ کرنے کی نیت ہے, لیکن پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رمضان شروع ہو گیا ہے, سب کی روٹین تبدیل ہوئی ہے, تو مفتی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی روٹین کیا تبدیل ہوئی ہے اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیونکہ ابھی تو ابتدائی رمضان ہے. کچھ مفتی صاحب سے بھی لیتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی مزید رمضان میں کیا کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب,
سب سے پہلے تو ناظرین اکرام کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو. اللہ رب العزت ہم سب پر یہ رمضان آسان فرمائے, روزہ رکھنا آسان فرمائے, اور تراویح پڑھنا آسان فرمائے, عبادات میں جو شوق و ذوق ہے اس میں اضافہ فرمائے, اور اس ماہ رمضان مبارک کے جو مبارک لمحات ہیں, بالخصوص افطار کا وقت, سحر کا وقت, ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت دعاؤں کی قبولیت سے ہمیں جو ہے مشرف فرمائے, اور جو بھی مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے, جو غفلت میں ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو آپ نے بات کی روٹین کی, تو روٹین تو چینج ہوتی ہے, سب کی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے رمضان میں, پھر جو آفس ورک ہوتا ہے, میں بعض اوقات کسی کو کہتا ہوں میں آفس جا رہا ہوں, میں آفس میں ہوں.
جی
تو آپ تو دار الافتاء میں ہوتے ہیں بھائی, وہ بھی آفس ہے, یعنی ایک ٹھکانے کو بولتے ہیں آفس, جب بندہ ورک کرتا ہے, کام کرتا ہے, اور یا تو فیکٹریاں ہوتی ہیں یا آفس ہوتے ہیں. فیکٹریوں میں فزیکل آپ ورک کرتے ہیں, اور جو اس کے علاوہ آپ ورک کرتے ہیں وہ دماغی ورک کرتے ہیں, تو ہمارا کام بھی ایک دماغی ورک کا ہے. اور فتویٰ لکھنا, چیک کرنا, تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم اس شعبے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بھی روٹین اور آفس ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے کافی ساری تبدیلیاں تو ہوتی ہیں.
مفتی بھی تو آپ نے اپنی بتائی, یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ویسے تو چل ہی رہا ہے, ہر طرف سے آ رہا ہے, لیکن کوئی 2-3 ایکشن ورک جو ہم کر سکیں, آپ جو سمجھتے ہوں کہ عوامی سطح پر ہمیں کم از کم رمضان میں یہ چیزیں لے لینی چاہیے.
دیکھیے, شروع کے روزوں میں سب سے زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے سونے جاگنے میں, اور اس سے زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے کھانے پینے میں. کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سحری کھاتے ہی آپ انتظار کر رہے ہیں کب فجر کا وقت ہوگا اور کب نماز پڑھوں گا اور کب سوؤں گا, تو یوں فوری آپ کھانا کھا کے اور ڈھیر سارا کھانا کھا کے سو جائیں گے تو معدہ تو ڈسٹرب ہوگا, کھٹی ڈکاریں تو آپ کو آئیں گی. اسی طریقے سے आपने जो है वो इफ्तार में भी एहतियात करनी है, बंदा हल्का फुल्का रहे उससे रोज़े की रूहानियत में और रूटीन्स में, काम में, तरावी में, सब चीज़ों में इजाफा हो जाता है। एक तो खाने पीने पर तवज्जो देनी है, दूसरी बात यह है कि रोज़ा हमने रखना है इबादत के तौर पर। अब रोज़ा रख के ऐसा लग रहा है कि आप सारे दुनिया की परेशानियां आप पर आ गई हैं, इबादत करते हुए इजहारे परेशानी नहीं होता। ओ गर्मी लग रही है, पंखा खोलो, ऐसे चला दो, ये जो बार बार नहाएंगे, अगर इससे वाकईतन कोई परेशानी हो रही है और वो परेशानी आप हल करना चाहते हैं और चीज़ है, लेकिन आप जरा गौर करें, इबादत में आप बिला ज़रूरत परेशानी तो जाहिर नहीं कर रहे, तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते बदकिस्मती के साथ, क्योंकि उनके नफ्स इतने उन पर गालिब होते हैं कि कुछ घंटे के लिए भी भूखा प्यासा रहना उन पर जो ना वो गिरा गुजर रहा होता है। तो देखिए, रोज़ा रखना एक इबादत है, हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, सिवाय ये कि जिन पर फ़र्ज़ नहीं है, यानी जो कज़ा कर सकते हैं, जैसे मुसाफिर है वो बाद में कज़ा करेगा, मखसूस अय्याम की ख़वातीन हैं बाद में कज़ा करेंगी। तो जिन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है तो उनको रखना ही रखना है, आप अपने चीज़ों को मैनेज करें। ये किसने कहा है कि आप रमज़ान आए तो ज़्यादा काम शुरू कर दें, जैसे हमारे दर्जी भाई ज़्यादा काम शुरू कर देते हैं, दुकानदारों पर लोड बढ़ जाता है, वो ज़्यादा काम शुरू कर देते हैं। तो रमज़ान में तो इबादत के लिए मैनेज करना है, इबादत सर फहरिस्त, बाकी सारे कामों को हमने इबादत को सामने रख के डिज़ाइन करना है। कमी नहीं है मुसलमानों की कि जो यही करते हैं, इबादत को सामने रख के देखते हैं कि मुझे कब सोना है, कब जागना है, तरावी पढ़नी है, तरावी के बाद सोना है ताकि जल्दी मैं उठूं, काम पर जाना है, इस हवाले से मुझे ये मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज करने से, मसरूफियात मैनेज करने से, और मसरूफियात में जो बर्डन है वो बर्डन मैनेज करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ऑफिस की टाइमिंग कम हो जाती हैं, जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, मतलब ऑफिसों में हैं, फैक्ट्रियों में हैं, तो बड़ी कंपनियां सहूलत दे देती हैं, छोटी कंपनियां आमतौर पर सहूलत नहीं देती। तो छोटी कंपनियों वालों को भी चाहिए कि अपनी जो लेबर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनके साथ रियायत करें, उनके मामूलात में, उनके औकात में उन्हें कुछ रियायत दें, ताकि रोज़ा रखना उन पर आसान होगा। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है।
ठीक, चलें जी, मुफ्ती साहब ने एक एक्शन प्लान दे दिया है जो मुफ्ती साहब को अच्छा मालूम हुआ है, तो हम भी इसको अप्लाई करें। मुफ्ती साहब, मैं रोज़े ही से बात शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आपने बड़ी ताकीद फरमाई है। यकीनन रोज़ा फ़र्ज़ है तो आपने ताकीद फरमाई है, लेकिन एक तबका है, यूँ समझ लीजिए, एक चीज़ जो है ना फैशन के तौर पर सामने आ रही है या लोगों की लाइल्मी या जो भी कह लीजिए, कि जो रोज़ा नहीं रख सकता वो कहता है जनाब रोज़ा नहीं रख सकते, तो क्या हम वो उसकी रकम दे दें, उसका वो उस रकम को क्या कहते हैं वो बताएं, वो जो रोज़े के बदले दी जाती है, तो ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, और क्या जो भी रोज़ा नहीं रख सकता तो जनाब वो कुछ रकम वगैरह देकर छुट्टी हो जाएगी उसकी।
देखिए, रोज़े का मुतबादिल कज़ा है, यानी कज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा। किसी उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ा हो या बिला उज़र रोज़ा छोड़ा हो, तो इसका जो मुतबादिल है वो कज़ा रोज़ा रखना है। कोई बीमार था वक्ती तौर पर, नहीं रोज़ा रख पाया, हालत सेहत में आ गया, कज़ा रखेगा। मुसाफिर था, नहीं रख पाया, उसके बाद रमज़ान के बाद इसकी कज़ा रखेगा। किसी और वजह से नहीं रखा, इसकी कज़ा रखेगा। तो रोज़े का मुतबादिल किसी भी तरह जो है वो फिदिया नहीं है। फिदिया सिर्फ एक शख्स के लिए है, उस उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया है कि जहां बुढ़ापा, जहां कमजोरी, जहां ज़ौफ, जहां बीमारियां उस पर गालिब आ चुकी हैं और अब रिकवरी की उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे बूढ़े जो है ना वो रोज़ा नहीं रख सकते। 70 साल के, 75 साल के बूढ़ों को मैंने रोज़ा रखते हो देखा है, बड़े आराम से रोज़ा रख रहे होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अमराज भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं, बड़ी उम्र के अफराद ऐसे होते हैं जिनके साथ वाकईतन ये सूरतेहाल दरपेश होती है। तो कोई शख्स शेखे फानी की हद को पहुंच जाए, बुढ़ापे में उतने ज़ोफ पर पहुंच जाए, अब रिकवरी नहीं होगी और अब जनाब उम्मीद नहीं है, उसके लिए फिर फिदिया है। एक रोज़े के बदले एक सदका फितर निकालना, ये फिदिया है। अब अगर ऐसा शख्स भी सेहतमंद हो जाता है तो अब इसका फिदिया एक नफली काम शुमार हुआ, इसको भी रोज़ा रखना पड़ेगा। बाज़ बीमारियां होती हैं जो लंबी भी हो जाती हैं, कई ऐसे अमराज हैं जो लंबे हो जाते हैं लेकिन वो दायमी नहीं होती। जैसे हमने देखा है हेपेटाइटिस के बाद मरीज होते हैं, साल साल बेचारे मुबतला रहते हैं लेकिन सेहतियाब हो जाते हैं, कैंसर तक के मरीज सेहतियाब हो जाते हैं। तो बात यह है कि बीमारी लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ा छोड़ देंगे। इसी तरीके से बाज़ लोग बीमार तो होते हैं, बड़े शदीद बीमार होते हैं, रोज़ा रखने की ताकत नहीं होती, लेकिन जैसे इस दफ़ा रोज़े आ रहे हैं, ज़्यादा रोज़े हैं हमारे अप्रैल में, अप्रैल में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है नो डाउट। अब अप्रैल में जो है वो गर्मी है, कोई शुगर का मरीज है, दो तीन अमराज और जमा हो गए, बड़ी मुश्किल है जनाब उसको। अगर उजर इतना पाया जा रहा है कि रोज़ा नहीं रख सकता, डॉक्टर भी मशवरा देते हैं, अपना तजुर्बा इस बात को बयान करता है, तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त तो होगी। लेकिन जब सर्दियां आती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, मतलब मशक्क़त जो है वो कम हो जाती है, मौसम की मशक्क़त तो किसी हद तक कम हो जाती है, तो ऐसे अफराद बआसानी रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, फिर बाद ऐसे भी लोग होंगे कि जो एक साथ कज़ा रखेंगे रोज़ों की तो ज़ोर बढ़ जाए और दुश्वारी हो जाए। जब कज़ा हो गए रोज़े तो एक साथ रखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं हफ्ते में दो रख लूँगा, फिर अगले हफ्ते दो रख लूँगा, इसकी भी इजाज़त मौजूद होती है, लेकिन रोज़े रखने ज़रूरी हैं। मुतबादिल छूट गए हैं जिसके रोज़े, उसका मुतबादिल है कज़ा रखना। हर सूरत में फ़दिया नहीं है, हर सूरत में कफ़ारा नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है जो अल्लाह ताला ने अमीरों को दे रखा है जिसके बाद पैसे फ़दिया निकाल दे, नहीं, ये इबादत है। रोज़ा अगर कज़ा हुआ है तो उसकी उसके बदले में कज़ा रोज़ा रखना है, ये ज़रूरी है, सिवाय ये कि शेखे फ़ानी की कोई सूरत पाई जाती हो।
मुफ्त जी साहब ने तफसील फरमाई, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो तीन बातें मेरे जहन में आ रही हैं इस वक्त के मदनी चैनल के नाज़रीन भी शायद उन सोच रहे हो। एक चीज़ ये आपने फरमाया कि बीमारी तो यूं भी होता है कि जी सर में दर्द है, नज़ला है, जुकाम है, हल्की सी हरारत हो गई है, थकान ज़्यादा हो रही है, आज पेट ज़रा सा ख़राब है, तो अब रोज़ा छोड़ देते हैं क्योंकि बीमारी तो पाई जा रही है, इसका तायुन कैसे होगा?
देखिए, इस तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, केला खाने से मेरे दांत छिले जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जी आप इतने नाजुक बन गए हैं कि आपसे ये हल्की फुल्की चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हल्की फुल्की चीज़ें कहलाती हैं, शदीद अमराज का एतबार है। बाज़ अमराज ऐसे होते हैं बंदा बेहोश हो जाता है, ऐसी मतलब कि वो होती है, तकलीफ़ बहुत होती है, जैसे बुखार है, बुखार वाले की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो बुखार में तो बंदा बिल्कुल से उठना मुश्किल हो जाता है, वो कैसे रोज़ा रखेगा। तो हम सब समझते हैं किन अमराज को हल्का फुल्का लिया जाता है, किन अमराज को बहुत सख्त लिया जाता है। तो सख्त जो अमराज हैं, सख्त तकलीफ की जो सूरत हाल है, उसमें रोज़ा छोड़ा जाएगा। दर्द सर हल्का फुल्का है या हल्की फुल्की जो ना वो टेम्परेचर हो गया है, बाज़ टेम्परेचर से होते हैं कि इंसान रेस्ट कर लेता है, उसको रेस्ट करने का मौका भी होता है, तो ठीक हो जाता है बंदा।
जी
बल्कि बाहर लोग तो बीमारी में खाने नहीं खाते,
जी जल्दी से अब हो जाते हैं, वो उनके तजुर्बे होते
कहने का
हैं।
मकसद ये वो दिल नहीं चाहता खाने को।
जी
तो ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि रोजा रखूंगा तो और बीमार हो जाऊंगा, सूरत हाल देखी जाती है, अपने यहाँ फैसला ना करें। और बदकिस्मती के साथ हमारे डॉक्टर साहिबान भी बाज औकात मरीज निपटाने के चक्कर में होते हैं। मुझे एक फोन आया कुछ दिन पहले ना, और आधा घंटा मुझसे किसी ने बात की, आधा घंटा।
बड़ा खुशकिस्मत था
मैंने
मुफ्ती साहब।
मैंने सवाल पूछा था, टेक्निकल सवाल था, तलाक का मसला था, तो मुझे पता था कि यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगी, है इनको अपना भड़ास निकालनी है, जब तक भड़ास नहीं निकालेंगे ये जवाब से मुतमईन ही नहीं होंगे। तो मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, आधा घंटा गुजर गया, बात सुन ली, फिर मैंने वो टेक्निकल सवाल दोबारा दोहराया, क्या ये अल्फाज थे, क्या ये सूरत हाल थी। तो देखें, बाज़ औक़ात जो आने वाला है ना,
जी ठीक
उसको अपनी भड़ास निकालनी होती है,
है, भरा हुआ है वो अंदर,
भरा
ठीक
हुआ है।
है।
अब एक निपटाने का तरीका ये है, डॉक्टर बोलता हाँ रोज़ा छोड़ दो आप। भाई, आप शरीयत के मामलात में इतने जरी कैसे हो गए? ऐसे मरीज भी मेरे पास आए हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा छोटी सी गोली तो है ये रख लेना बस दिमाग के नीचे। भाई, वो छोटी सी गोली रोज़ा तोड़ देगी, डॉक्टर को डॉक्टराना मशवरा देने चाहिए, तिब्बी राय दे वो, नो डाउट, लेकिन वो हकीकत पर मबनी हो।
डॉक्टर मुफ्ती अब डॉक्टर है
डॉक्टर
मुफ्ती
मुफ्ती
ना
कैसे
बने,
बन गया? वही ना,
डॉक्टर डॉक्टर है मुफ्ती ना बने।
वो ये कैसे कह सकता है कि रोजा इससे टूटेगा और इससे नहीं टूटेगा?
बहुत सारे लोगों को इसका तजुर्बा होगा। 2-3 साल पहले रमजान में मैं ठीक ठाक बीमार हुआ था आपके बिल में, तो मुझे तजुर्बा हुआ कि बीमारी तो वाकई में शदीद थी, लेकिन वो ना रोजे को कनेक्ट नहीं कर रही थी, यानी रोजा रखने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो रोजे डॉक्टर बहुत जिद कर रहा, भाई आप रोजे ना रखो ना रखो, हालांकि मुझे रोजा रखने ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आपने जो बात पहले बात कही कि वो तकलीफ ऐसी थी, बीमारी ऐसी थी कि बस उसमें कुछ खाने को वैसे ही दिल ना चाहे, तो भाई जब खाना पीना भी नहीं है तो रोजे रखो।
खैर, बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं उसमें खा नहीं सकता, उसमें पीना ज़रूरी हो जाता है, किसी को जुलाब लग गए हैं, ठीक है, अब नमकियात की मुसलसल कमी हो रही है, तो अब कम से कम वो ORS वगैरह इस तरह की जो नमकियात वाली चीज़ें हैं उसके लिए पीना ज़रूरी हो जाता है। तो खैर सूरत हाल डिफरेंट है, बाज़ लोग खुद फैसला कर रहे होते हैं कि जी हम अपने आप ही कोई आसानी निकाल लें, ऐसा नहीं है। या जिनसे जिनके पास आप जाते हैं, अच्छा मजहबी लोगों को भी मैंने देखा है, बाज़ आइम्मा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, मतलब थोड़ा भारी आदमी है ना, पैसे वाला है या कुछ और है, उनके
तो
सामने
बाजू का रोब भी होता है।
वो हिम्मत नहीं। देखें, आलिम दीन नाइब रसूल होता है, रोब किस चीज़ का? शरीयत के मसाइल बताने में किस चीज़ का रोब? हम डांटेंगे नहीं, हम झाड़ेंगे नहीं, हम जो भी तकाजे हैं दावत के निज़ाम के, यानी दावत दीन का जो भी उसलूब है उसके तहत मसला बताएंगे उसको। भारी मसला है, थोड़ा सा मुस्कुरा के, थोड़ा सा ग्राउंड बना के, थोड़ा सा ताकि उस पर मुजाहिमत ना हो उसके अंदर,
ठीक है, रहे
उसके अंदर
हमदर्दी करते
अगर
हैं।
वो बदअमली का शिकार भी होता नहीं मानेगा, मुजाहिमत तो ना हो कम से कम। तो किसी शख्स को बागी नहीं बनाया जाता, तो मसाइल के मामले में अगर वो बागी हो गया तो फिर तो उसके ईमान के लाले पड़ जाएंगे। तो दावत दीन का ये उसलूब है कि मसला कंप्रोमाइज आपने नहीं करना। कंप्रोमाइज करने का मतलब मुदाहनत है कि आप जो हैं वो दीन को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं, आप दीन को बेच रहे हैं, बेशक आप कोई मुआवजा नहीं ले रहे, लेकिन ये मुदाहनत है कि आप दीन किसी के लिए शक्ल देख के आप दीन के मसाइल बताएं, ऐसा नहीं है। सच बताएं, वाज़े ओपिनियन दें और अपनी राय बताएं।
उसे यहाँ इसको ज़रा सा कंक्लूड हो जाएगा अगर मैं इसमें एक बात ऐड कर दूँ, बड़ी मतलब वो चुभी मुझे बात। किसी ने इसी तनाजुर में मुझसे कहा कि जी कोई मसला था, पूछा तो जो शरीयत का हुक्म था बताने वाले ने वो बताया, तो कहा ये तो बड़ा जुल्म है, आपको रहम नहीं आता। तो उलमा को तो चाहिए कि वो रहम दिली के साथ मसाइल बताएं, दूसरे की मजबूरियाँ समझें, क्योंकि आपने वो पीछे गुफ्तगू की है, तो मैंने कहा कंक्लूड हो जाएगा।
एक मरतबा एक ताजिर मेरे पास आया था, मसाइल सीखने के बाद, सूद के मसाइल थे, ठीक है ना, मैंने कहा तो सूदी मामला आते हैं, मुफ्ती साहब आप काम करो तो आपको पता चले काम कैसे किया जाता है। मैंने कहा मैंने तो आला रहमा का वो पढ़ रखा है कि इस बेकैद तिजारत में वो पड़ेगा जिसे आखिरत की फिक्र ना हो। सब बेकैद तिजारत नहीं करते, जो तिजारत को
जरूरत
बेकैद समझता है कि इसमें कोई कैदोबंद नहीं है, जो चाहो करो, वही करेगा जिसको आखिरत की फिक्र ना हो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है मेरोज भाई, वो चीज़ ये है कि उलमा पर जवाब देना उस वक्त वाजिब होता है जब सवाल पूछा जाए,
ठीक,
और वो भी अगर फितने की कैफियत हो तो बाज़ औक़ात खामोश भी रहा जाता है।
सही, ठीक,
ये मतलब नहीं है कि आप जवाब गलत देंगे, ये मतलब बिल्कुल नहीं है
ये एक नया पहलू आप बयान कर रहे हैं।
जी। लेकिन एक सूरत हाल ये होती है कि बाज लोगों के ना वो हाजमे सही नहीं होते, उन्हें बम मारने की आदत हो जाती है, जहां जाते हैं बम मार के आ जाते हैं, ठीक है,
गुफ्तगू का
यानी बहुत भारी मसला है। उसलूब दावत दीन का उसलूब ये है कि पहले आप लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करें, दीन की तरफ रागिब करें, नमाज रोजा वो पढ़ेंगे, खौफ खुदा पैदा होगा, अब हलाल व हराम की जो फिक्र है वो लाहिक होगी। हलाल व हराम की जब तक उसके अंदर फिक्र नहीं है ना तो वो सीरियस नहीं होगा। तो कुछ लोग वो होते हैं कि जो दावत दीन के इस उसलूब से आरी होते हैं, सामने वाले की नफ्सियात, उसको क्या समझाना है, कितना डोज देना है, कितनी चीजों के सामने बयान करनी है, ये चीजें नहीं देख रहे होते। अब वो सामने वाला जब एक ही तरह की बात सुन रहा है तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहला मेरा होता है दावत दीन, نیکی کی طرف لے کر آنا اس کو، اب وہ اپنی زندگی میں عملی طور پر دین کو نافذ کرتا ہے، شریعت کی تعلیمات کو نافذ کرتا ہے، تو یوں یہ آسان وے ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ۔ بعض اوقات میں بہت ساری مارکیٹس میں جاتا ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے اس مارکیٹ میں غالب کام جو ہے نا وہ حرام ہو رہا ہے۔ بعض ایسے مارکیٹیں ہوتے ہیں، سب ایسے مارکیٹیں نہیں ہیں، تو ایک آدھ مسئلے کو تو میں بیان کر دیتا ہوں، اب میں ان کی پوری مارکیٹ کو لے کے نہیں بیٹھتا،
ٹھیک،
نفس بہت بھاری ہوتے ہیں، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے چیزوں کا سننا، اور پھر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ سب کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں نا اور آپ پہ چوٹیں پڑ رہی ہیں، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، تو آپ کے اندر سے پشیمانی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، باغیانہ خیالات پیدا،
اور کیونکہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا آج کے دور کے اندر،
ٹھیک،
علماء کے تعلق سے بدگمان کر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ میں گیا، میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا، عام زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی رمضان جو ہے یہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک سرکل ہے، زکوٰۃ نصاب کا سال جو ہے نا اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ ایک تاجر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے،
جی
کہ لگے یہ تو آپ نے پہلی دفعہ بات بتائی ہے، تو ہم نے آج تک نہیں سنی،
پہلی بار سنی ہے،
پہلی بار سنی ہے، اولڈ ایریا میں کسی مسجد میں بیان تھا۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو بچہ ہوں، مطلب میری اتنی عمر ہے، حضرت قبلہ شاہ تو ابلغ صاحب تشریف فرمائے،
جید و بزرگ عالم،
ایک جید ہستی ہیں، اور ایک اس وقت حیات تھے وہ، ان کے پاس چلے جائیے، آپ کو میرے ادارے سے اتفاق نہیں ہے، اب دارالعلوم امجدیہ چلے جائیے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بھی وہی بات کہیں تو آپ قبول کر لیجیے،
ٹھیک، یعنی اصل تو مسئلہ شریعت ہے،
ٹھیک ہے نا۔
ٹھیک ہے،
میں نے واضح کر کے بات بیان کی کہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پرفارمر جو ہے نا وہ خود ڈاؤٹ میں ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے اس کو کلیئرٹی شو کی۔ اب میں اپنے روٹین پر آ گیا، بیان شروع کر دیا، کافی سال ہو گئے اس واقعے کو، تو وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، دوران بیان اٹھ کے چلے گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ جو حقائق ہیں اور بہت لائٹلی باتیں ہیں وہ بھی نہیں سن رہے ہوتے۔ یہ جو ایک نیا فتنہ آیا ہے نا کہ اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو
سب کی سنو
سب کی سنو، یہ جو حقائق ہے اسے دور کر رہا ہے آپ کو، آپ اس کی سنو کہ جو اہل حق ہیں، جن کا تعلق سینہ بہ سینہ جڑا ہوا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہم تو ایک حدیث بیان نہیں کرتے بغیر سند کے، ہم تو جاتے ہیں ان علماء کے پاس جنہوں نے سند لی ہے۔
جی
میں حاضر ہوا ایک مزار شریف پر کراچی میں میوہ شاہ پہ، جو اس کے سجادہ نشین ہیں،
جی
ان کی عمر 1960 کی ان کی پیدائش ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے نا، تو کتنی ہو گئی،
63 سال
ہو گئی، ان کے والد کی عمر 135 سال تھی،
ٹھیک،
کتنے سال پیچھے چلے گئے ہم،
135 سال پیچھے ہوگا،
63 پلس کریں نا آپ، ان کے والد کا انتقال 70 میں ہوا،
70 میں ہوا اور 135 سال عمر تھی،
عمر تھی،
یہ تو وہ پچھلی صدی میں چلے گئے،
پچھلی صدی میں چلے گئے نا آپ،
جی
18ویں صدی میں چلے گئے آپ،
جی،
اور ان کے جو دادا تھے،
جی
انہوں نے میوہ شاہ قبرستان آ کے آباد کیا، مطلب ان کے نام سے ہی تھا، حضرت میوہ شاہ جو ہے تو بعد میں آئے ہیں،
1845 سے بھی پیچھے کی بات ہو گئی،
ٹھیک ہے، پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جناب کس طرح وہ آئے اور روڈ بننے جا رہا تھا، یہاں پہ روڈی بچھا دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں دفن ہوں گا، اور وہ وہیں دفن ہوں گے، گوروں کی حکومت تھی، وہ حیران پریشان ہیں قبر کہاں سے آ گئی، جو اٹانے آئے اس کو کیفیت وہ ہو کہ ہٹ جائے۔ تو پھر انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ گھوڑے لے کے چکر لگاؤ، جتنا ایریا چاہتا ہوں ہم دیں گے، تو منگو پیر روڈ آ رہا تھا، یہاں سے گزرنا تھا، وہ یہاں سے ہٹ کے جو آپ ہم دیکھتے ہیں بڑا بورڈ کی طرح مارگل مارکیٹ سے نکلتا ہے، وہاں موو ہوا۔ اب یہ سارے واقعات کس نے بتائے مجھے،
یہ ان کے پوتے
اس شخص نے بتائے ہیں جس نے اپنے والد سے اپنے دادا کے متعلق سنا،
ٹھیک ہے، ایک واسطہ ہے بیچ میں،
اور ماشاءاللہ جیلانی سادات، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، اور سادات کی لڑی اپنی ہوتی ہے، اپنی ان کی سندیں ہوتی ہیں،
ان کا خود شجرہ نسب الگ،
خود اپنا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے،
جی
تو سینہ بہ سینہ کیسے معاملات آگے آ رہے ہیں سامنے،
جی ماشاءاللہ،
تو ہوتی ہے سب چیزیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں जो एक हदीस सुनाने के लिए अपने दौर से लेकर नबी अकरम अलैहिस्सलाम तक पूरी सनद लेकर आते हैं।
सुभान अल्लाह,
हमारे पास कोई ज़ईफ रावी नहीं होता। बुखारी अगर हम सुनाते हैं तो इमाम बुखारी का हवाला देकर नहीं सुनाते, हम कहते हैं हमें बुखारी शरीफ सुनाई है हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान आजमी साहब अलैहि रहमा ने, उन्होंने सनद दिए मुझे, और उनको सनद दी सदुल शरिया ने, और उनको सनद दी आला हजरत ने, और आला हजरत की सनद पर किताब लिखी हुई है पूरी कि आला हजरत ने किससे ली किससे ली किससे ली किससे ली। तो हम तो एक एक बात की सनद रखते हैं। तो जो बेसनद लोग आ चुके हैं ना मार्केट में, बारिश के मेंढकों की तरह जगह जगह पे दुकानें खोल रही हैं, इनके पीछे कोई भी नहीं है, नो सपोर्ट। ये आज हैं, कल इंतकाल होगा, दुनिया से जाएंगे चपटा किलोस, पूरा दीन उनका कब्र में चला गया,
कागजी फूल है।
कागजी फूल है, ठीक है। बल्कि थिएटर के जो ना वो अदाकार हैं, थिएटर बंद हुआ और चले गए, किसी को नहीं पता चला वो स्क्रिप्ट कहाँ गया, वो अदाकार कहाँ गया, वो लाइटिंग कहाँ गई और वो ऑडियंस कहाँ गए। लेकिन 1400 सालों से जिसका ताल्लुक रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से कायम है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरह लाखों लोग मौजूद हैं आज रोए ज़मीन पर। इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले, मैं सिर्फ स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्कॉलर्स जो मुफस्सरीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो फुकाहा हैं, आज रूए ज़मीन पर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वो इमाम शाफी के मानने वाले हों, इमाम आजम के मानने वाले हों, इमाम मालिक के मानने वाले हों, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हों, वो सनद रखते हैं अपने एक एक बात की सनद रखते हैं। अगर उन्होंने इमामा भी बांधा है तो इस इमामे की भी उन्हें सनद हासिल है,
सुभान अल्लाह,
वो इमामा भी सनद लेकर बांधते हैं।
बेदलील कुछ नहीं है।
बेदलील कुछ नहीं है, सुने तो सही। आपकी अगर ख्वाहिश है थिएटर देखना, सिर्फ अदाकाराओं को देखना, आपकी ख्वाहिश है सिर्फ चिकनी चपड़ी बातों को सुनना, तो ये दीन नहीं हो सकता। दीन वो है जो सनद के साथ है। इसीलिए फरमाया गया, मुस्लिम शरीफ में एक कौल लिखा हुआ है, जब दीन का मामला हो तो ये देखो हासिल कहां से कर रहे हो दीन, बड़ा अहम मामला है।
वजाहत के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो गई है, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे किसी के जहन में वसवसे वगैरह थे तो अल्लाह ने चाहा तो इस गुफ्तगू के बाद रहने नहीं चाहिए। मुफ्ती, अभी जो हमारी इससे पहले जो गुफ्तगू चल रही थी जिसके जीवन में ये सारी आपने तफसील बयान की, तो दोबारा आते हैं रमजान की तरफ, रोजे की तरफ। आपने एक उजर बयान फरमाया था कि सफर जो है वो उजर है रोजा छोड़ने का। तो क्या जिस दिन सफर करना है, यानी आज गोया के सफर करना है, तो आज का रोजा पहले से छोड़ सकते हैं, और इसी तरह जिस दिन पहुंच रहे हैं तो उस दिन का रोजा भी छोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें?
देखिए, सफर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, आप सफर करते हैं, आपका सफर दिन को भी हो सकता है, 10 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, और एक होता है कि भाई अब आप अगले दिनों में सफर में ही हैं, वो सफर 5 दिन का है, 10 दिन का है, आप किसी एक जगह पे जा रहे हैं और 15 दिन से कम की नियत है तो आप मुसाफिर रहेंगे, कई शहरों में जा रहे हैं। जैसा कि रमजान मुबारक में लोग उमरा करने जाते हैं तो कुछ दिन मक्का मुकरमा ठहरते हैं, कुछ दिन मदीना मुनव्वरा ठहरते हैं, ठीक है, वो 20 दिन के लिए गए लेकिन दोनों जगहों पे तकसीम हो गए, और किसी भी एक जगह पर उनकी 15 दिन की इकामत नहीं पाई गई तो मुसाफिर ही रहे। अब जब सफर शुरू हो गया और अगले दिन जब आए हैं तो उसमें तो मुसाफिर रोजा छोड़ सकता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। पेचीदगी कहें या थोड़ा सा गलतफहमी कहें, वो है पहले दिन के साथ। लोग समझते हैं आज तो मैंने सफर करना, आज मैं रोजा छोड़ सकता हूँ, ऐसा मुतलकन नहीं है। अगर सुबह सादिक से पहले आपका सफर शुरू हो रहा है, आपकी 3 बजे की फ्लाइट है और रोजा बंद हो रहा है 4 बजे, तो आप अगले दिन आप रोजा ना रखें, इसकी रियायत मौजूद है, फिर आप बाद में कजा के तौर पर रखें। लेकिन अगर आप जो हैं वो सफर कर रहे हैं, रोजा जब शुरू हो जाता है, सहरी खत्म हो गई, रोजा शुरू हो गया, उस दौरान आपका सफर शुरू होना है, तो आपको उस दिन का रोजा रखना है। जो आपने सवाल किया, जब वापस आ रहे हैं
जी ठीक
तो वापस जब आप ट्रेवल करेंगे उस दिन तो आप मुसाफिर हैं,
है,
उस दिन जो भी वक्त पाया जाए,
सही
10 बजे का पाया जाए दिन का या 2 बजे का पाया जाए, रोजा छोड़ने की वहां गुंजाइश मौजूद है, जबकि आप मुसाफिर हैं, आपकी इकामत ना पाई गई हो।
मुफ्ती। अब आपने माशाल्लाह काफी ब्रीफ जो है उस पे अभी एक्सप्लेनेशन दी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सवालात कर लूँ जो बहुत कॉमन है, हर साल ही किए जाते हैं, आप जवाब भी इरशाद फरमाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त भी मदनी चैनल की स्क्रीन पे भी और सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए भी बहुत मुफीद होगा। कुछ सवालात हैं मुझसे, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तो आप अगर उसका क्विक रिप्लाई दे दें, जायज़ या नाजायज़, हलाल और हराम होने के एतबार से, तो वो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे एक बड़ा कॉमन सवाल है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा?
देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। बहुत सारे उलमाए उनका ये मौक़िफ़ है। हज़रत मुफ्ती शरीफ़ुल अकमदरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी तफसील के साथ अपने मकाले में इस बात को बयान किया है। कुछ उलमा हैं जिनका मौक़िफ़ ये भी है कि टूट जाता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हमारा दारुल इफ्तार सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि रोज़े की हालत में अगर इंजेक्शन लगवाया या ड्रिप लगवाई तो रोज़ा नहीं टूटेगा।
सर, बाद लोगों को सांस का, दमे का प्रॉब्लम होता है, वो इनहेलर यूज़ करते हैं और रोजे की हालत में भी उन्हें यूज़ करना पड़ जाता है बाजू का, तो उसका क्या हुक्म होगा?
इनहेलर से जो चीज़ जाती है वो आपके जोफ में जाती है, मैदे में जाती है, हलक में जाती है, तो इनहेलर में बुखारात होते हैं, तो इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। कोई मरीज़ ऐसा है कि जिसे इतनी तकलीफ़ है कि रोज़ा रख ही नहीं सकता, इनहेलर के बगैर गुजारा ही नहीं है, या उसने रखना तो शुरू किया अब दमा तारी हो गया, तो हम इस कैफियत में ये तो नहीं कहेंगे कि इनहेलर इस्तेमाल ना करे। इनहेलर इस्तेमाल तो वो करेगा लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। मतलब जिस तरीके से कोई शख्स जख्मी हो गया, अब जनाब उसको पानी पिलाना नागुजीर हो गया है, या कोई इस मर्ज की इस कैफियत में पहुंच गया रोजे की हालत में कि उसे कुछ खिलाना पिलाना जरूरी हो गया है, तो जिस तरीके से वहां रोजा तोड़ने की इजाजत है, तो ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि रोजा तो टूटेगा, लेकिन अगर दौरान रोजा इनहेलर जरूरी हो जाता है तो रोजा टूट जाएगा, इसकी कजा करनी पड़ेगी।
ठीक, मुझसे खून निकलवाने से, खून निकलवाया या खून चढ़वाया, इससे रोजे पे क्या होगा?
आमतौर पर रोज़ा जो है कुछ चीज़ अंदर जाने से टूट रहा होता है,
जी
इखराज से नहीं टूट रहा होता, सिवाय वो उल्टी की एक सूरत है कि किसी ने जो है वो जानबूझकर के की और वो मुंह भर आई है तो उससे रोज़ा टूटता है। तो खून निकलने से, खून का निकलना ऐसे ही है जैसा कि बोलो बराज निकलते हैं, पेशाब वगैरह बंदा करता है, तो वो भी तो इखराज होता है ना।
ठीक,
खून का भी अगर इखराज है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
अगर लगवाया किसी मरीज को, पेशेंट को जरूरत थी और उसको लगवाना है।
देखिए, जिस तरीके से हमने ड्रिप के बारे में कहा है कि ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटता, तो खून अगर किसी ने चढ़वाया है तो रोज़ा तो उससे भी नहीं टूटेगा।
ठीक, वो सब इसी तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, तो ऑक्सीजन अगर लिया तो उसका क्या हुक्म होगा?
रोज़े की हालत में ऑक्सीजन से रोज़ा टूट जाएगा।
मुख्तलिफ इसी तरीके से बाजू का जख्म होता है, या तो एक्सीडेंट हो जाता है या पुराना जख्म है, उसकी बैंडेज तब्दील करनी है, तो उससे क्या हुक्म होगा?
खारजी अमल है, नहीं, इसका ताल्लुक जोब से नहीं है। मैदे में कोई चीज़ आप दाखिल नहीं कर रहे। कोई शख्स जो है ना वो पट्टी जड़वाता है या सर पर तेल लगाता है या वो बैरूनी अज़ा पर कोई क्रीम लगाता है या कोई वैसलिन हो गई, कोई बाम हो गई, गले पर उसने मल ली, तो बैरूनी जो अज़ा है इस पर कोई चीज़ मलता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
मतलब इसी तरीके से नाक बंद हो जाती है तो नाक के भी ड्रॉप्स आते हैं, वो अगर डाले नाक में।
देखिए, नाक में डालने वाली चीज़ हलक में जाती है, हलक एक मरकजी रास्ता है मैदे तक जाने के लिए, तो उन ड्रॉप से रोज़ा टूट जाएगा।
और मतलब बाम जो आती है, बाम उसको इनहेल करते हैं, स्मेल, मतलब उसकी स्मेल से भी जो है फायदा होता है, उसका क्या हुक्म हो?
देखिए, अगर सिर्फ वो बू है
जी
और उसके अज्जा नहीं जाते,
जी
तो बाज ऐसे बाम जो है इसको सूंघा जाता है, उसके अज्जा नहीं जाते तो वो इतर की तरह है, और कोई इतर सूंघता है, गुलाब का फूल सूंघता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा।
तो कान में दवा डालने का क्या हुक्म होगा?
देखिए, अगर तो किसी का पर्दा फटा हुआ है तो कोई भी चीज़ जाएगी तो वो अंदर जोफ में दाखिल हो जाएगी।
जोब से
अब
मुराद मुंह लेंगे?
जोफ से मुराद मैदा है,
ठीक
मैदे के दाख मुख्तलिफ रास्ते होते हैं,
ठीक
दिमाग में सुराख हो गया तो वो भी एक रास्ता बन जाएगा,
ठीक
नॉर्मली तो वो रास्ता नहीं होता।
ठीक
नॉर्मली रास्ते होते हैं नाक, हमारा नाक है, हमारा मुंह है,
अलग है।
और भी एक आध रास्ते हैं, उनका जिक्र मुनासिब नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो पर्दा किसी का नहीं है और अब उसने ड्रॉप डाले हैं कान में, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और पर्दा अगर सलामत है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि किसी ने ड्रॉप डाले हैं कान में तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ उलमा ज़रूर ये फरमाते हैं कि कान में रोज़े की हालत में भी ड्रॉप ना डाले जाएं, उससे रोज़ा टूट जाता है। तो अगर मजबूरी ना हो तो इख्तलाफ उलमा से बचना बेहतर होता है, आप बाद में डाल लें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि रोज़ा नहीं टूटेगा।
सर, इसी तरह आंख में दवा डाली, ड्रॉप्स डाले?
देखिए, आँख में जब ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो एक बारीक सा सुराख मौजूद है जो हलक में उतरता है, तो इस सुराख के जरिए कोई चीज़ हलक में जब उतरेगी तो रोज़ा तोड़ देगी। तो इसलिए आंख में डॉट्स डालने की रोजे की हालत में हरगिज इजाजत नहीं है, रोजा टूटने का हुक्म दिया जाएगा।
तेल डालने से, खुशबू लगाने से, क्रीम लगाने से, इनसे रोजा टूटेगा नहीं?
हाँ, पंजाब वाले तेल डालना बोलते हैं, वैसे कराची वाले तेल लगाना बोलते हैं। ठीक है, जो भैंसें होती है ना, उनके मुंह में तेल डाला जाता है। ठीक
ठीक
है, तो वो एक सूरत है मुंह में दाखिल करने की। आमतौर पर तो तेल बालों पे लगाया जाता है, बिरूनी हिस्से पे लगाया जाता है, तो ये इसको लगाना कहते हैं, इससे तो रोजा नहीं टूटेगा। और क्या सवाल था आपका?
तेल है, क्रीम है, खुशबू
हाँ,
है।
करीम लगाने से, खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें आप बैरूनी अज़ा पर लगा रहे हैं, कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो रही। हाँ, खुशबू के लिए कोई धुनी इस्तेमाल करता है और उसको लेता है, सूंघता है, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर धुआं है, कोई बाइक पे जा रहा है और जनाब गाड़ी ने टकाया साइलेंसर, जैसे कि हमारे यहाँ कराची में जनाब बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, मिनी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत पुरानी पुरानी, बाइक पर चलने वाले सारे कपड़े काले कर देती हैं। अब वो धुआं गया किसी के मुंह के अंदर, कसत नहीं था यहाँ पर, आज खुद चला गया। ये जो गुबार है, तो कुछ चक्की में काम करता है, आटे की चक्की में, अब वो गुबार उड़ रहा है जनाब, कसत नहीं है उसका, सूंघ नहीं रहा, तो इसमें माफी दी गई है। तो इस तरह का जो गुबार है, इसमें माफी दी गई है।
मिसवाक करने का क्या हुक्म होगा रोज़े में?
रोजे की हालत में मिसवाक की जा सकती है। हाँ, ये है कि रेशे अंदर ना जाए, मिसवाक की जा सकती है।
इसी तरीके से टूथपेस्ट भी किया जा सकता है रोज़े में?
टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है, ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट के अगर अज्जा हलक में उतरते हैं तो रोजा टूट जाएगा, वरना उससे रोजा नहीं टूटेगा।
इसी तरीके से थूक या बलगम, बिल्खुसूस इब्तदाई रोज़ों में ज्यादा ऐसा हो रहा होता है, थूक है या बलगम है और वो निगल लिया है, चला गया हलक में।
बाद लोग तो समझते हैं जनाब थूक गया तो गया रोजा, थूकते रहते हैं रोजे की हालत में, ऐसा दुरुस्त नहीं है। और बलगम अंदर से ही आती है, और वो अगर चली गई, जैसे बलगम दिमाग से भी गिर रही होती है हलक में, या नाक के जरिए हलक में चली गई, तो अंदर की चीज अंदर ही चली गई, सर नहीं टूटता। हाँ, किसी ने थूक लिया है हाथ में और उसको चाट रहा है, एक दो बार निकालने के बाद, अमलन ऐसा नहीं होता, आदतन कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन बिलफर्ज की सूरत पाई जाती है, तो इससे रोजा टूट जाएगा। थूक वैसे मुंह में आया, मुंह में पैदा हुआ, वो आपने निगल लिया, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
आखिर में एक और सवाल मैं करना चाहूंगा रमजान से रिलेटेड, कि हमारी एक कल्चर नया प्रमोट हो रहा है, पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि महंगाई ज्यादा हुई है, वो है बचत बाजार, राशन के, फ्रूट्स के, जो भी अशिया खुर्दोनोश है, इवन लिबास के हवाले से भी, कपड़ों के भी, जूतों के भी बचत बाजार लगाए जा रहे हैं। बाज़ खैरख्वाह किस्म के अफराद हैं जो चीजें खरीद के या तो कम मुनाफे पे दे रहे हैं या बगैर मुनाफे के दे रहे हैं, बल्कि बाज़ तो उसमें सब्सिडी करके, यानी कुछ उसकी जो खरीदारी की है उससे भी कम रकम पे दे रहे होते हैं, तो इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे?
देखिए, बिलाशुबा ये भी एक नेकी का काम है, मुसलमानों पर आसानी पैदा करना, मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, उनके लिए राहतों का सामान पैदा करना नेकी का काम है। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी, जुड़िया बाजार के एक ताजिर की वीडियो थी, तो वो कह रहे हैं कि भाई जिस रेट पर हम रिटेलर को माल देते हैं, होलसेल रेट पर, तो क्यों ना हम आम पब्लिक को भी दें। उन्होंने रोड पर एक स्टॉल लगवा दिया और पब्लिक जाके वो चीज़ें ले रही हैं। अच्छा, यहाँ ये इस बात को भी सामने रखना ज़रूरी है कि बहुत सारे कारोबारी लोग चैरिटी के नाम पे बी और सी क्वालिटी का माल निकालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये ना हो कि आप कोई डैमेज किस्म का माल निकाल रहे हैं और आप शो कर रहे हैं कि जी मैंने चैरिटी कर दी है। इसी तरीके से जो बचत बाजार है, यानी सस्ती चीज़ें बेचने का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है। रमजान मुबारक में मजीद होना चाहिए और मजीद सेल्स होनी चाहिए, कि सहूलियात दी जाएँ, रियायत दी जाएँ, चीज़ों की कीमतें कम की जाएं, ताकि मुसलमानों पर आसानी पैदा हो। यहाँ एक और चीज़ भी बाज़ जगहों पर देखने को मिल रही है कि बाज़ मस्ाजिद जो ना इन्वॉल्व हो रही हैं बचत बाजार में। अगर मस्ाजिद इन मानों में इन्वॉल्व हो रही हैं कि भाई वहाँ लोग जो भी होते हैं अहले मोहल्ला, उन्होंने मिल मिला के बाहर एक स्टॉल लगा लिया, तो ये तो बड़ी मुस्बत सरगर्मी है, बहुत अच्छी सरगर्मी है। तो पैसा उनका अपना है, सब्सिडी दे रहे हैं तो वो पैसा भी उनका अपना है, कोई ज़कात उसमें इस्तेमाल नहीं हो रही। ज़कात अगर इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपको मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की तमीज़ करना पड़ेगी। इन माना में तो काबिल तारीफ काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद की अमलाक इसमें इस्तेमाल हो, मस्जिद के पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर ये सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो तजारती सरगर्मी है ना। बेशक ये चैरिटी काम है, लेकिन मस्जिद इन चैरिटी कामों के लिए नहीं है, मस्जिद है इबादत के लिए। मस्जिद से मुतल्लिका जो काम है फिनाए मस्जिद में वही होंगे, और मस्जिद में इबादत होगी। ذکر، اذکار، بیان، وعظ، نصیحت، مسجد کا یہ پرپز ہے۔ مسجد کو انہی کاموں کے لیے چندہ دیا جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر اگر آپ دکان کھول لیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اعتدال پر چلنا ہوتا ہے۔ افراط بھی درست نہیں ہے، تفریط بھی درست نہیں ہے، یعنی حد سے کمی بھی درست نہیں ہے، حد سے تجاوز بھی درست نہیں ہے، بیلنس مل کر چلنا ضروری ہے۔ اور مساجد کمیٹیوں کے اندر بہت ساری کوتاہیاں اس وقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کے احکام کیا ہیں، وقف کے تعلق سے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو اس تعلق سے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، کتاب ہے پوری، چندے کے بارے میں سوال و جواب۔ اس کتاب کا پڑھنا بے حد مفید رہے گا، ہر مسجد کمیٹی کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔
چلے جی، مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ سلسلے میں کافی سارے سوالات ہو گئے، کچھ شارٹ ہو گئے، کچھ تفصیلی ہو گئے۔ مجھے امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی، اللہ کرے کہ یاد بھی رہیں، ان پہ عمل بھی ہمارا ہو جائے۔ مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل راؤنڈ دی کلاک چل رہا ہے، پورے رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو آپ نے کہیں اور نہیں جانا۔ اسٹے وِد اس، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
احکام تجارت، احکام